हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं सब वैष्णवगण को प्रणाम करता हूं, वरिष्ठ भक्तजन, ब्रह्मचारी गण और जितने भी सीनियर वैष्णव हैं, मैं उनसे भिक्षा मांगता हूं, याचना करता हूं कि जो भी शब्द मेरे मुख से निकले वो हमारे प्रभुपाद जी को प्रिय हो, हमारे आचार्य गण को प्रिय हो और उपस्थित जितने भी वैष्णव हो उनको भी प्रिय हो, ये मैं भिक्षा करता हूँ। मेरे में ना कोई ऐसी योग्यता है, लेकिन जैसे भी आप सब वैष्णवों ने मुझे यहाँ पर इस कार्तिक मास, पवित्र मास, वृंदावन धाम में, कृष्ण बलराम मंदिर में मुझे अवसर दिया है, कुछ दामोदर लीला के बारे में पांचवें श्लोक में क्रम अनुसार जो कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, उसमें ये मेरा सौभाग्य है, मेरी इसमें शुद्धता होगी, तो मैं आप सबसे कृपा याचना करता हूं। हरे कृष्णा। तो हमें ये बताया गया था कि इस श्रीमद् भागवतम क्लास में, हिंदी वाले में, हम लोग दामोदर अष्टकम की चर्चा कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से चार श्लोक की चर्चा हुई और आज पांचवें श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। तो हम प्रयास करते हैं इस सुंदर सी जो अष्टकम कविता है सत्यव्रत मुनि ने जिसकी रचना करी है, हमारे ये जो दामोदर अष्टकम है किसी सत्ययुग में उसकी रचना हुई थी। आप सब वैष्णवगण तो जानते हैं कि चार युग है और वो निरंतर उसका जो है बार बार आना, कलयुग, त्रेता, उसे कलयुग, द्वापर, त्रेता, सत्य और फिर दोबारा कलयुग। ऐसे ब्रह्मा जी का जितना आयुष्य होता है उतने करोड़ों साल, इतनी बार 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 जो है ये चार युग आते रहते हैं। तो हमें मालूम भी नहीं है कि कौन से सत्य युग में नारद जी और शौनक ऋषि आदि गण के साथ संवाद हो रहा था और सत्यव्रत मुनि ने उस संवाद का जो सार ग्रहण करके दामोदर अष्टकम के रूप में उन्होंने जो है पेश किया है, जो हम वैष्णव, खास करके गौड़ीय वैष्णव, कार्तिक मास में बड़े रुचि से गाते हैं। हरिभक्ति विलास में गोपाल भट्ट गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि इस मास में जिसको दामोदर मास कहा जाता है उसको ऊर्जा मास भी कहा जाता है। राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी। ऊर्जा का मतलब यह हुआ सो बहुत ही विशाल, बहुत ही उज्ज्वल, बहुत ही सुंदर, हर प्रकार से भक्ति में, कृपा में राधा रानी की कोई तुलना नहीं है। इसीलिए कृष्ण स्वयं उनको ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राधा जी का भाव धार करके वो स्वयं महाप्रभु के रूप में आए। इसीलिए राधा रानी को ऊर्जेश्वरी कहते हैं और ये महीना ऊर्जा महीना है और खास करके राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए जो हर गौड़ीय वैष्णव का ध्येय है, लक्ष्य है कि राधा रानी हमारे से प्रसन्न हो। और राधा रानी सबसे ज्यादा कैसे प्रसन्न होती है, जब हम कृष्ण के गुणगान गाते हैं राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है। कृष्ण के लीला का गुणगान, कृष्ण के नाम का उच्चारण, कृष्ण के भक्त, कृष्ण की लीला स्मरण आदि करने से राधा रानी अतिशय प्रसन्न होती है। तो इस अष्टकम में इतना सुंदर भाव है जो सत्यव्रत मुनि ने प्रकट किया है और इस अष्टकम के ऊपर हमारे कई वरिष्ठ गौड़ीय आचार्यों ने टीकाएं करी हैं। उनमें से आप लोग सब जानते हैं कि षड गोस्वामियों में से सनातन गोस्वामी हमारे वरिष्ठ आचार्य है, उन्होंने हरि भक्ति विलास में एक पूरा सेक्शन लिखा है जिसका नाम है दिग्दर्शनी। और दिग्दर्शनी में उन्होंने इस दामोदर अष्टकम की व्याख्या करी है, बहुत ही सुंदर व्याख्या करी है उन्होंने। तो आइए हम इसमें डूबते हैं। रसिक आचार्यों का जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से इस दामोदर अष्टकम के श्लोक है। हम प्रयास करेंगे उन्हीं की कृपा से, जैसे गंगा जी को अगर गंगा जी की पूजा करनी है तो गंगा जल से ही होती है, तो उन्हीं के शब्द हम उन्हीं को अर्पण करते हैं, इन हमारे आचार्य गण को। श्रील प्रभुपाद जी ने भी इतनी सुंदर टीकाएं श्रीमद् भागवतम में लिखी हैं, दसवें स्कंद में जो दामोदर लीला का जो अध्याय है। जीव गोस्वामी पाद ने गोपाल चंपू में आठवें अध्याय में बहुत सुंदर विवरण किया है जिसका नाम है दाम बंधन लीला। तो हम प्रयास करते हैं, समय बहुत कम है, वैसे देखा जाए तो इसके लिए कम से कम एक सप्ताह चाहिए दामोदर अष्टकम के लिए, उसको अच्छी तरह उसका रसपान करने के लिए। वैष्णव गण आचार्य गण कहते हैं कि कृष्ण के दर्शन कैसे किए जाते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं, जवाब उनका यह है कि हमारे नयनों से, चक्षुओं से। लेकिन और भी गहरे दर्शन होते हैं ठाकुर जी के, ठाकुरानी के, हमारे कानों से, कर्णों से, जब हम उनकी कथा का श्रवण करते हैं। और खास करके जब रसिक आचार्यों ने हमें जो उनका दृष्टिकोण, उनका भाव, अंतरकरण का भाव जब उन्होंने प्रकट किया है, तब हमें और भी जो है चार चांद लग जाते हैं इन 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 लीलाओं में। इसीलिए उसको कहते हैं विस्तार करना, एक एक शब्द, एक एक श्लोक के ऊपर हमारे आचार्य गण, विश्वराज चक्रवर्ती पाद है, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद है, भक्ति विनोद ठाकुर जी है, ये सारे के सारे गौड़ीय आचार्यों ने एक एक शब्द के ऊपर विस्तार किया है। इसलिए जो विस्तार करता है उसको व्यास कहते हैं। व्यासदेव को भी व्यासदेव, क्योंकि उनका तो नाम वैसे तक कृष्ण द्वैपायन, क्योंकि उनका जन्म द्वीप के ऊपर हुआ था इसलिए उनका नाम द्वैपायन पड़ा, और उनका जो वर्ण कृष्ण जैसे काला था इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। लेकिन उन्होंने वेदों का विस्तार किया इसलिए उनको व्यास कहा गया। तो ये हमारे आचार्य गण की कृपा है कि आज हम इस पांचवें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो यहां पर पांचवें श्लोक में आइए हम सब लोग एक बार गा लेते हैं साथ में। इदं ते मुखाम्भोजम् अव्यक्त नीलय वृतम कुंठलय स्निग्ध रक्तश्च गोप्या मुहुश्चुंबितं बिंब रक्त अधरम मे मनसि अविराष्टम अलम लक्ष लाभे। सत्यव्रत मुनि इस पांचवें श्लोक में कहते हैं इदम ते, उससे शुरू करते इन दो शब्दों से इदम। इससे पहले मैं ये थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि दिग्दर्शनी में जब सनातन गोस्वामी पाद ने इस दामोदर अष्टकम पर जो टीका लिखी है तो उसमें बताते हैं हमारे आचार्य गण, जैसे सत्यव्रत मुनि और कृष्ण का एक संवाद हो रहा है। जब हम दामोदर अष्टकम रोज गाते हैं तो हमें ये तुरंत हमारे हमको नजर नहीं आता, वो प्रकाशित नहीं होता। और जैसे मैंने पहले शुरुआत में कहा था, ये जितने हमारे आचार्य गण हैं उनके दृष्टिकोण से, उनका जो हृदय से भाव प्रकट होता है, जब उनके दृष्टिकोण से हम सुने और पढ़े और ओ भाव, हम ये याचना मांग सकते हैं कि कभी ना कभी, किसी ना किसी समय हमारी साधना भक्ति करने के पश्चात हमारे में भी ये भाव उत्पन्न हो। तो ये एक संवाद है किनके बीच में, सत्यव्रत मुनि जिन्होंने दामोदर अष्टकम की रचना करी, और कृष्ण के बीच में। तो पहले चार श्लोक का मैं संक्षेप में थोड़ा सा बता देता हूं, शायद हमारे कुछ भक्तगण यहां पहले हो ना हो। हमारे आचार्य पाद सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि सबसे पहले वो कृष्ण के गुणगान गाते हैं, जिसको बोलते हैं ऐश्वर्य, उनके ऐश्वर्य विशेष लीला को मध्य नजर रखते हुए। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि सत्यव्रत मुनि का पहले भाव है कि नमामि ईश्वरम सच्चित आनंद रूपम। भगवान का कोई भी अवतार होता है वो सच्चित आनंद रूप होता है, लेकिन सत्यव्रत मुनि खास करके ये बोलते हैं मैं सच्चिदानंद रूप तो नारायण है, विष्णु है, राम जी है, वराह देव है, भगवान के अनंत अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूप, सारे के सारे भगवान के रूप या अवतार है, सारे सच्चिदानंद है। लेकिन सत्यव्रत मुनि को रुचि है सिर्फ उस सच्चिदानंद में, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, जिनके कुंडल लसत कुंडलम कहां पर, गोकुल में ब्रजमानम, जो गोकुल में सच्चित आनंद है भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्णा, उनको मैं नमन करता हूं ये दास्य भाव में। आगे जाकर के उनकी स्तुति में वो कृष्ण की जो है गुणगान गाते हैं उनके आभूषणों के, उनके रूप के, तो रूप में वो प्रस्तुत करते हैं कि आपके कुंडल कितने भाग्यशाली है कृष्णा, कि आपके गालों को चुंबन करता और आप जैसे हिलते हो तो आपके कुंडल भी कितने सुंदर तरीके से हिल रहे हैं। तो कृष्ण के रूप और कृष्ण के आभूषणों का जो है सत्यव्रत मुनि उनके ऊपर मंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। और फिर आगे जाकर के वो जो है कृष्ण के अंतरंगत पार्षदों के, कृष्ण की मां यशोदा के गुणगान गाते हैं, कहते हैं कि यशोदा भीयुलु खलत धवमानम परमष्टम अत्यंत ततो धृत्य गोप्या। यशोदा माई से आप डर करके उखल पे चढ़े हुए थे और जितनी मटकियां जो फोड़ी बंदरों और कौवों को आपने जो खिलाया पिलाया, और उसके बाद माता यशोदा छड़ी लेकर के आए, आप जो है डर मग डर के मारे उखल से कूद पड़े और आंगन में दौड़ने लगे, और उस समय माता यशोदा दृढ़ होकर के आपको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ी, जैसे एक भक्त को दृढ़ होना चाहिए भक्ति में। रूप गोस्वामी कहते हैं निश्चया दृढ़व्रता। तो हमें भक्ति में ये यशोदा माई से एक गुरु के समान है, वो कैसे भक्ति करते हैं, तो उनको कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण नटखट है उनको पकड़ना है, उनको दंड देना है, ये भी एक माता का भाव है, वात्सल्य रस है, ये माता और पिता का ये कर्तव्य है, बड़ों का कर्तव्य है कि कोई अगर बच्चा कोई त्रुटि करे, कोई ऐसी हरकत करे तो उसको दंड अवश्य देना चाहिए, ताकि वो उसकी भलाई के लिए, वो भी एक प्रेम है। तो सत्यव्रत मुनि माता यशोदा के प्रेम का लक्षण यहां पर बताते हैं जब ये लीला का वो स्मरण करते हैं। और फिर आगे जाके कहते हैं कि कृष्णा तुम कितने डर गए थे, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुसाश कंपत रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदर भक्ति बद्धम। माता यशोदा ने उनका प्रेम आपके प्रेम से भी बढ़कर है। हमारे आचार्य कहते हैं कि यद्यपि व्रज का ऐसा भाव है, भगवान तो हमें प्रेम करते ही हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, हर एक जीव को प्रेम करते हैं, सिर्फ मनुष्यों को नहीं, सिर्फ देवी देवताओं को नहीं, चींटी से लेके हाथी तक, कुत्ते से लेके बिल्ली तक, 84 लाख योनि में भगवान श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ जाते हैं परमात्मा के रूप में। भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता में, मैं सुहृत सर्वभूतानां, मैं सर्व जितने भी भूत है, जितने भी जीव है उनका मैं सुहृत हूं। तो ऐसा मित्र कहां मिलेगा इस हमारे जड़ जगत में। हमने देखा है कभी कभी सब लोग परिचय दिला दिए, ये मेरा सबसे अच्छा मित्र है, अपने नातियों को, अपने पोतों को, अपने बच्चों को, कि बचपन में हम लोग साथ में सहपाठी थे, हम क्लास में पढ़ते थे और ये सबसे मेरा बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन वो बेस्ट फ्रेंडशिप कट जाती है कभी ना कभी, जब आयुष्य क्षय हो जाता है या कभी ऐसी कोई असमझौता हो जाती है तो दोस्ती भी टूट जाती है। लेकिन कृष्ण ऐसा हमारा मित्र है, चाहे हम कोस कैसी भी योनि में जाएं वो हमारे साथ है, इतना प्रेम करते हैं हमें। लेकिन भक्त भी कृष्ण को प्रेम करते हैं, लेकिन जिस तरह जो व्रजवासी जो व्रज का प्रेम है उसकी कोई तुलना नहीं है। हमारे सनातन गोस्वामी पाद बताते आचार्य बताते हैं कि कृष्ण का एक नाम है भक्त वत्सल। लेकिन भक्त वत्सल तो हर एक ने सुना है, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि व्रज के अंदर कृष्ण जो है भक्त वश्य है। क्या है? भक्त वश्य, भक्तों के जो है वश में आने वाले। और क्यों भक्त के वश में आते हैं व्रज में? क्योंकि व्रज की भक्ति है। हमारे प्रभुपाद जी का एक प्रिय श्लोक था, आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजुवधुवर्गेना तया कल्पिता श्रीमत भागवत पुराण अमलम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतैदम नायत्र याग्रह परः। अगर आराधना करनी है तो आपको कई भगवान है, बड़ी स्वरूप है भगवान के, उन किसी भी भगवान की आराधना कर सकते हो। लेकिन मैं ये प्रस्ताव देता हूं कि व्रजेश तनय, व्रज की जो राजा है उसका तनय मतलब उसका पुत्र यशोदा नंदन कृष्ण, नंद नंदन कृष्ण, राधा रमन कृष्ण, राधा श्याम सुंदर कृष्ण, उसका उसकी आराधना कीजिए। आराध्य व्रजेश तन तत् धाम वृंदावन, और धाम भी भगवान के कई हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री ये सब, काशी बनारस है, ऋषिकेश है, रामेश्वरम है, भगवान के बहुत सारे धाम है, तीर्थ है। लेकिन अगर उन्होंने प्रस्ताव ये दिया है कि अगर धामों में धाम अगर आपको आराधना कर दिए तो तद धाम वृंदावनम। और अगर उपासना करनी है तो कैसी उपासना करनी है? उपासना भी कई भक्तों की वरिष्ठ उपासना है, लेकिन सबसे वरिष्ठ मानी जाती है व्रजु वधु वर्गेना तया कल्पिता, जो व्रज की वधुआएं जो गोपी हैं उनका जो भाव है, उनकी जो उपासना है कृष्ण के लिए, वो सबसे बड़ा है। और अगर ग्रंथों में अगर आपको किसी की आराधना करती हो तो वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु का ये निर्णय है कि श्रीमद् भागवत पुराण अमलम, सारे पुराण में से अमल पुराण है जिसमें कोई भी दाग नहीं है, प्रेम पुमर्थो महान, सबसे ऊंचा प्रेम देता है श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य महाप्रभुर मत इदम, ये चैतन्य महाप्रभु का मत है। तो सत्यव्रत मुनि माता यशोदा के गुणगान गाते हैं, और उसके बाद जो है कृष्ण की जो जो लीला है, लीला विशेष में प्रवेश आते हैं, बोलते हैं कि आप बंद गए और दामोदर भक्ति बद्धम, क्योंकि माता यशोदा का प्रेम आपके प्रेम से अधिक है। मैं दोबारा इसको दोहराता हूं, आचार्य गण की वाणी, जब हमारा प्रेम कृष्ण से प्रेम से अधिक होता है तो कृष्ण हमारे वश में आते हैं। जैसे सखाओं के वश में है कृष्ण, सख्य भाव में, यद्यपि अगर कृष्ण हार जाते हैं खेल में तो मधुमंगल कहता है कि ठीक है तेरे बाबा नंद महाराज व्रज के राजा है, गोकुल के राजा है, लेकिन मैं गरीब ब्राह्मण का बेटा हूं, लेकिन तू हारा है काना, तुझे उठ बैठ कान पकड़ के करना ही पड़ेगा। तो कृष्ण तुरंत करते हैं, उसको बोलते हैं भक्त वश्य। छछिया भर छाछ गोपियन नाच नचाई, थोड़ी सी छाछ के लिए गोपियों के लिए कृष्ण नृत्य करते थे, कृष्ण नाच ले हमारे लिए। तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सारी सृष्टियों में से जिनमें से सबको जन्मादि यस्य, वेदांत सूत्र के जो पहले दो शब्द है और श्रीमद् भागवतम के पहले भी दो शब्द है, जन्मादि यस्य, सब कुछ आपसे उत्पन्न होता है, जितने भी अवतार है सब कुछ, वो स्वयं गोपियों के छचियन भर छाछ, छोड़ी सी छाछ के लिए कृष्ण वो नाच उठते हैं, भक्त वश्य है। तो आप माता यशोदा के भय से बंद गए और आप छड़ी के भय से रोने लगे, और आपने काफी कुछ नाटक किया, मृदंतम मुहूर् नेत्र, जानबूझ के आपने जो है अपने नेत्र को चोड़ा, उसको घिसा ताकि नेत्र निकले और आपको माता यशोदा छोड़ दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, माता यशोदा ने छड़ी तो फेंक दी लेकिन तुमको पकड़ के रखा, दामोदर भक्ति बद्धम, उनके प्रेम की वजह से आप पकड़े गए। वैसे किसकी की हिम्मत है या किसकी हस्ती है कि कोई कृष्ण को पकड़ पाए, ये असंभव है। लेकिन जब हमारा प्रेम बढ़ जाता है कृष्ण के प्रेम से तो कृष्ण हमारे वश में आते हैं। मुंह साश कंपत रिरे खांक कंठ स्थित ग्रेव दामोदर भक्ति वदा, जब देखा माता यशोदा अभी भी दृढ़ है उसको दंड देने में, तो सचमुच में रोने लगे और उसकी सांस फूलने लगी और कहने लगे, मैया, मुंह सांस कंपन, और कंपन होने लगा उनके शरीर में, और उनके सुंदर श्री अंग के ऊपर मोती की जो माला है, स्थित ग्रैव ग्रैव माला, मोती की माला, वो हिल रही है जैसे उनकी छाती सांस फूल रहा है। दामोदर भक्ति पद्म, इस प्रकार से इद्रिक्ष और लीलाभीर आनंद कुंडे, इस प्रकार से व्रजवासियों को, खास करके व्रजवासियों को गोकुल के अंदर आनंद के कुंड में डुबा दिया। इद्रिक्ष और लीला नाना प्रकार की मीठी मीठी जो मधुर मधुर लीला करके व्रजवासियों को डुबा, आनंद कुंडे स्वघोष निमंजनतम। स्वघोष का अर्थ हमारे आचार्यगण समझाते हैं कि अपना धाम, जैसे कहते हैं ना कोई कि आप कहां से हो, तो कोई कहता है कि मेरा स्टेट पंजाब का है या गुजरात का है, ये मेरे अपने गुजराती है, ये हमारे अपने पंजाबी है, अपनापन। तो कृष्ण यहां पर कहते हैं, वहां पर स्वघोष, स्वघोष मतलब मेरे अपना गोकुल है, तो मेरे जो अपने हैं निकट के हैं उनको उन्होंने डुबा दिया। स्वघोष निमंजनतम मतलब उनको डुबा देना, अख्यपयंतम। और साथ साथ में ये संवाद है, कृष्ण कहते हैं, ओ मेरे भक्तगण, मेरे बहुत सारे भक्त हैं, वैकुंठ की उपासना करने वाले दास्य रस में बहुत सारे भक्त हैं, तो उनको कहते हैं कि तदि ईशित अग्नेशु, जो जानता है कि मैं भगवान हूं, जिसको ज्ञान है कि मैं भगवान हूं, देख लो मेरे इन गोकुलवासियों को, देख लो मेरे व्रजवासियों की भक्ति को। तदि ईशित अग्नेशु भक्तर्जितत्वम पुनः प्रेम स्तद सत्तावृति वंदे। सत्यव्रत मुनि कहते कि मैंने आहा इस गोकुल की, इन व्रजवासियों की भक्ति देख करके मैं ये आप व्रजवासियों को, इस लीला को मैं बार बार हजारों बार नमन करता हूं। तो कृष्ण इन सब बातों से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। सनातन गोस्वामी बात कहते हैं कि ये एक वार्तालाप है, और प्रसन्नता में कहते कि अच्छा सत्यव्रत मुनि, तुमने पहले मेरे दास्य रस में आपने मेरे वैभव का जो है गुणगान किया, फिर जो है आपने मेरे आभूषणों का, मेरे रूप का गुणगान किया, फिर मेरी माता का गुणगान किया, और फिर आपने मेरे व्रज का, मेरे गोकुल का गुणगान किया, तो क्या चाहते हो आप, कुछ चाहिए आपको? अच्छा ठीक है, सत्यव्रत मुनि कुछ बोलने से पहले ही वो कुछ अपने मन में कृष्ण ने धारण कर लिया कि इसको हम मुक्ति प्रदान कर देते हैं, बहुत लोग लाइन में खड़े हैं मुक्ति के लिए। तो सत्यव्रत मुनि वो समझ जाते हैं और वो कहते हैं तीसरे श्लोक के, चौथे श्लोक के अंदर, वरम देव मोक्षम ना मोक्षम अवधिम वा। कृष्ण को वो संबोधित करते हैं ऐसे नाम से, वरम देव। वरम देव मतलब वो कहते हैं हमारे आचार्य कि भगवान के नाम अगर बांट लो तो दो विभाग में हम भगवान को पुकार सकते हैं, एक बोलते हैं गौणीय नाम और दूसरे बोलते हैं विशेष नाम। तो गौणीय नाम का उदाहरण क्या हुआ, जैसे हम बोलते हैं हे परमात्मा, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, ये गौणीय नाम हुए। और जो मुख्य नाम कैसे हुए कृष्ण को वो ज्यादा पसंद है, क्योंकि उनमें उनके भक्तों के नाम जुड़े हुए हैं और उनकी लीलाओं के गुणगान जुड़े हुए। जैसे हम जय राधा माधव में जो यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, तो ये ऐसे ऐसे नाम, राधा रमन, राधा श्याम सुंदर, ऐसे ऐसे नामों से जब हम कृष्ण को पुकारते तो कृष्ण बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते, अरे तुम मेरी माता का नाम जानते हो, ये भक्त कौन है जो ईश्वर ईश्वर हे प्रभु प्रभु पुकारते हैं, उसकी तो सुन लेते हैं लेकिन इसकी पहले सुनते हैं, जो उसको नंद नंदन नाम से पुकारता है, जो उसको राधा रमन के नाम से पुकारता है, जो उनको गोपी जन वल्लभ के नाम से पुकार, इत्यादि नाम, तो वो अपने को बहुत ही निकट समझते हैं कृष्णा उन भक्तों को। तो यहां पर सत्यव्रत मुनि ने उनका भाव थोड़ा सा बदल दिया और उनको कहते हैं वरम देव। उनको अपने कौन से नाम से पुकारा, वरम देव एक गौणीय नाम है, विशेष नाम नहीं है, हे वरम देव। तो यहां पर ऐश्वर्य आ गया, मैं जानता हूं कि आप वरों के ईश हो, दो बार ऐसा शब्दों का प्रयोग, वरम देव मोक्षम न मोक्षम देव न च वृणे अहम वर ईशाट, वर के जो ईश्वर है वो कृष्ण है, उनका एक नाम है वर ईशाट, दो बार उस नाम से संबोधित किया है, कृपा करें मुझ पर। क्या फिर कहते कि वरम देव मोक्षम, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। वैष्णव के लिए मोक्ष नारकीय होता है, समय की पाबंदी के हिसाब से मैं इस वजह से मैं ज्यादा अंतर में नहीं जा सकता, बगर लेकिन वैष्णवों को मुक्ति इसलिए नारकीय क्योंकि मुक्ति में उसमें क्या है, वो उसके अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए होते, कृष्ण के लिए नहीं है। किसी ने नारद जी से पूछा कि भैया एक लाइन में बता दीजिए कि उत्तम भक्ति किसको कहते हैं, तो नारद जी ने कह दिया अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम तद भक्ति उत्तम, जो कृष्ण को अनुशील है वो भक्ति उत्तम है। तो मुक्ति तो किसको अनुशील है, हमको अनुशील है, हम थक गए हैं इस जड़ जगत के लिए, तो अभी हमें मुक्ति मिल जाए तो हमारे लिए उसमें कृष्ण कृष्ण की संतुष्टि के लिए है ही नहीं, इसलिए मुक्ति नारकीय और मुक्ति में कोई सेवा नहीं है। तो ये दो जो भाव है वो वर्जित है वैष्णवों के लिए, वैष्णव सेवा के बिना नहीं रह सकते। वरम देव मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, और इससे पहले कि आप मुझे ये प्रस्ताव रखे चलो ठीक है करोड़ों करोड़ों मुनि बैठे हैं योगी बैठे हैं मुक्ति की राह में, तो आपकी श्रेणी शायद अलग होगी, तो मैं आपको वैकुंठ में वास देता, अवधिम अवध मतलब वैकुंठ। तो कहते वहां पर भी नहीं चाहिए, तो कृष्ण चौंक उठे और अरे वैकुंठ भी नहीं, वहां तो मेरा साकार रूप है, मैं रामचंद्र जी के रूप में विराजमान हूं, अनेकों नारायण रूप में हूं, और मेरे कितने सारे अवतार हैं, आप कहीं भी वहां पर सेवा में उपलब्ध हो सकते हो, और सेवा उपलब्ध हो सकती है। तो सत्यव्रत मुनि में जो भाव है वो व्रज भाव है, इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे ये भी मंजूर नहीं है, आई डोंट वॉन्ट दिस, जो वैकुंठ अगर दे रहे हो, क्योंकि वहां पर दास्य भक्ति विद्यमान है और वो मुझे मैं ठीक है, लेकिन वो मेरी पसंद की बात नहीं है। जैसे कोई अगर भोजन करे और भंडारे में बैठे हैं, तो किसी को रसगुल्ले बहुत पसंद है, तो प्रभु प्रभु और दो रख लीजिए, तो कोई कहेगा रसगुल्ले से मुझे चमचम पसंद है, तो चमचम दे दीजिए। तो नाना प्रकार के जो टेस्ट होते हैं ना, जो रस होते हैं, अलग अलग भक्तों को नाना प्रकार के रस होते हैं, तो उनको वैकुंठ रस नहीं है सत्यव्रत मुनि को, तो सत्यव्रत मुनि जो है उसको भी नकार कर देते और कहते न चो अन्य, उससे पहले मुझे और कहीं भेज दे द्वारका या मथुरा, मैं वहां पर भी नहीं जाने वाला। तो कृष्ण कहते हैं भैया तो अब तुम ही बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो ये संवाद है, हमें बार बार अपने आप को याद करवाना पड़ता है। तो बोलते इदम ते वपुर नाथम गोपाल बालम सदा में मनसी अविराष्टम कि मन्ये, मैं उसी गोपाल भाव को जो मुझे थोड़ी सी स्फूर्ति हुई थी जो अभी मैंने देखी कि जैसे कृष्ण को माता यशोदा ने डांटा और उसको बांध दिया गोकुल में, जो आपकी जो सुंदर सुंदर लीला है, जो गोकुल के व्रजवासियों को आपने जो आपकी मधुर लीला में डुबा दिया, तो ऐसे इदम ते वपुरनाथम गोपाल बालम सदा मेरे हृदय के हृदय कंद में अंतर में सदा वो बनी रहे, ये मैं आपसे याचना करता हूं। कृष्ण बड़े खुश हो जाते हैं, बोलता तू तो बहुत ऊंचे कक्ष का भक्त निकला। तो बोलता ठीक है तथास्तु, मैं तुम्हें ये दे देता हूं। और फिर पांचवें श्लोक में हम प्रवेश करते हैं, इदम ते मुखाम भोजम अव्यक्त निलेर। सत्यव्रत मुनि ने जब उनको वो स्फूर्ति मिल गई, उनके हृदय के अंदर भगवान कृष्ण ने जो है उसकी इच्छा पूर्ण करी, और जो उनका सारा वपु है जो बाल गोपाल का, वो अंकित हो गया उनके हृदय के अंदर और वो लीलाओं का स्मरण करने लगे। लेकिन अब जो है भक्त है, कई कई भक्त ऐसे होते हैं कि उनकी जो है आकांक्षाएं हैं, उनकी भक्ति है, वो संतुष्टि पा लेते हैं कुछ हद तक पहुंचकर। जैसे कुछ भक्त जो है दास्य रस में बहुत ही खुश रहते हैं, और वैकुंठ जब वो शुद्ध हो जाते हैं और सिद्धि पाते हैं तो वैकुंठ लोक में उनको निवास मिलता है। यद्यपि अगर कोई रामचंद्र जी का भक्त है तो वैकुंठ में अयोध्या वहां पर जैसे गोलोक वृंदावन है और ये वृंदावन भौम्य है, तो वहां पर भी जो है वैकुंठ में अयोध्या है जहां पर नित्य राम जी और राम जी के पार्षद निवास करते हैं, तो उनको वहां पर उनको जो है वहां पर उनको प्राप्ति होती है उस सेवा की, तो वहां पर वो तृप्त हो जाते हैं। तो वहीं जैसे कि हनुमान जी महाराज दास्य भक्त में सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं, तो उनको दास्य भक्त में बहुत ही संतुष्टि है, इसीलिए हनुमान चालीसवां भी एक लाइन आती है, तुलसीदास जी कहते हैं सदा रहो रघुपति के दासा, क्योंकि आपकी इच्छा है रघुपति के दास बनने की, तो सदा आप उसी में रमण कीजिए, उसी सेवा में आप हमेशा जो है रहिए। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो जिनकी आकांक्षा बढ़ती है, और ये हमारा ये थोड़ा सा गौड़ीय भाव में रूप गोस्वामी पद्यावली में बताते हैं, और चैतन्य चरितामृत में रामानंद राय जी के साथ और चैतन्य महाप्रभु के संवाद में एक श्लोक निकलता है रामानंद जी के श्री मुख से कि शुद्ध भक्ति की कीमत क्या है। हर एक चीज की कोई प्राइस होती है, कीमत होती है, उसका मूल्य होता है। तो जैसे कि अगर मुझे ये कुर्ता खरीदना है, लोई बाजार में चले गए तो 500 रुपए का कुर्ता दे दिया, कुर्ता बैग में रख लिया, आ गए। अगर हमें कहीं जाना है तो टिकट कटवा लिया, उसके पैसे ले लिए, उसका मूल्य दे दिया। तो शुद्ध भक्ति का मूल्य क्या है? तो रूप गोस्वामी बात कहते हैं लोल्यम अपि एक मूल्यम, ग्रीड लोभ, लोभ जो है ना वो एक सबसे बड़ा मूल्य है। हम मंगल आरती में भी रोज गाते हैं श्री राधिका माधवी और अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम ना प्रति क्षणा स्वादन लोलुपस्य, लोलुपस्य मतलब लोभ, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो सत्यव्रत मुनि को जो है अब एक लोभ आया उसके हृदय में, मुझे बाल गोपाल का स्वरूप तो मिल गया, लेकिन अब मेरी इच्छा यह है कि उनके श्री मुख मंडल को मैं सदा मेरे हृदय कंद के अंदर मैं बसा लूं। तो इदम ते मुखाम भोजम, इदम ते का अर्थ समझाते हैं सत्य अपने सनातन गोस्वामी कि जैसे आपने पहले मेरी इच्छा पूर्ण करी, आपका बाल गोपाल का जो स्वरूप चौथे श्लोक के अंदर आपने मेरी इच्छा पूर्ण करी है, तो मैं आपसे ये याचना करता हूं, तो मेरी ये इच्छा भी पूर्ण कर दे कि आपका जो सुंदर कमल जैसा मुख है, इदम ते मुखाम बोझ अव्यक्त निले, थोड़ी सी स्फूर्ति हुई आपके चेहरे के, सुंदर चेहरा कैसा लग रहा है आपका रूप, तो कहते हैं कि वृतम कुंठ लय स्निग्ध रक्तैस, आपके सुंदर घुंघराले बाल है, और उसका वर्णन सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं उनकी टीका में, जैसे कि जो आवृतम मतलब उनके पूरे चेहरे को ढंके हुए, और जैसे कि भंवरे होते हैं, भंवरों का जब झुंड होता है तो वो झुंड जैसे उनके सुंदर बाल रग रहे हैं, और काले नीले से बाल है उनके, और उस बालों में थोड़ी सी लालिमा है रक्तैस, ऐसे सुंदर कृष्ण के बाल है, स्निग्ध उनके बाल जो है बड़े सॉफ्ट है, कोमल है, ये उनके मुख चंद्र का दर्शन कर रहे हैं या अभिलाषित है। और फिर जो है आगे अभिलाषा उनकी ये देखते हैं उनकी स्फूर्ति में, मुहुश्चुंबितम बिंब रक्त धारा में सदा में मनसी अलम लक्ष्य लभे। तो कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि आपकी सुंदरता इतनी है, हाँ गोप्या यशोदा माई आपको बार बार चुंबन दे रही हैं, और चुंबन देने से और आपके जो होस्ट है बिंब जसमान के लाल होस्ट है आपके, इतने सुंदर है अदर। भगवान का रूप खास करके व्रज के जो कृष्ण है बहुत ही सुंदर है, नव नीरद निंद तकांति धरम रस सागर नागर भूपवरम शुभ वंकिम चारु शिखंड सिखिम भज कृष्ण निधिम व्रज राज सुतम। नव नीरद के समान उसको भी निंदित कर देने वाला, जो नया नया बादल छाता है उसको भी निंदित करने वाला उसका कृष्ण का स्वरूप है। नव निंदत निंदित कांति धर्म, नए बादल को भी निंदित करने वाला जो उसकी कांति है, उसको भी निंदित करने वाला जो है कृष्ण का जो जो वर्ण है, उनका जो रंग है। तो ये कृष्ण का जो रूप, खास करके भगवान के सारे जो रूप है उनके अंश उनमें साठ कलाएं हैं, लेकिन जो व्रज के अंदर जो कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण, यशोदा माई के लाल, नंद नंदन जो राधा रमन गोपी जन वल्लभ है, उनकी चार एक्स्ट्रा क्वालिटी है, चार विशेष गुण है उनके। क्या है वो? मधुरता है, माधुर्य रूप, माधुर्य वेणी, माधुर्य उनका, और दो कौन से हैं जी? माधुर्य लीला, हाँ जी, और माधुर्य जो है उनकी, उनका हाँ वेणु। तो ये जो है वो सबसे, इसीलिए ब्रह्मा जी भी स्थगित हो जाते हैं जब जब वो प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमाहम भजामि। करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी जो है गोविंद जो है बहुत सुंदर है, उस गोविंद को मैं बार बार नमन करता हूं। तो इदम ते मुखाम भुजम अव्यक्त निलय, और उनका जो कलर है वो अव्यक्त है। व्यक्त मतलब इस भौतिक जगत के अंदर व्यक्त होना, जो हम देख सकते हैं, लेकिन कृष्ण का जो नील वर्ण है वो अव्यक्त है, वो जो है बिल्कुल चिन्मयी है। इसीलिए उसकी कोई यहां पर तुलना ही नहीं है, ऐसा रंग ही नहीं है इस जड़ जगत में कि उनका, इसलिए अव्यक्त नील है। नील मतलब जो नील कलर का, लेकिन अव्यक्त नील है। और वृतम कुंठ लय, उनका जो पूरा जो मुख है, वृतम कुंठ लय स्निग्ध, उनके सुंदर सुंदर कोमल कोमल बाल जैसे भवरे छाए हुए हैं। और भवरे कहां पर जो है आकर्षित होते हैं सबसे ज्यादा? जो सुंदर फूल होता है, खास करके कमल। तो कृष्ण का जो है फूल मुख कैसा है? इदम ते मुखाम भोजन, मुख जो है एक कमल की तरह है, और कमल के इद गीत सारे, बहुत सारे भवरे उनके बाल के रूप में, ऐसा लग रहा है ऐसी वृत्ति आ रही है उनको, ऐसी स्फूर्ति आ रही है कि उनकी जो है उनका रूप बाल बार जो है सुंदर कमल भवरों से जो है आग इद गीत भरा हुआ है। और लाली माँ थोड़ी सी उनके केश में से कांति आ रही है। च गोप्या मुहुस चुंबितम बिंब रक्त अधरम में, और यहां पर गोपिया का अर्थ सनातन गोस्वामी बात बताते हैं कि ये यशोदा गोपी है जो बार बार चुंबन देती है कृष्ण को, लेकिन सत्यव्रत मुनि का और भाव, उनका लोभ बढ़ जाता है और कहते हैं अपने मन ही मन में, सबसे ज्यादा चुंबन अगर व्रज के अंदर करता है तो कौन करता है कृष्ण को? राधा रानी। बोलो राधा रानी की। तो उनके मन में ये बात आ जाती है सनातन गोस्वामी पाद के कि ये तो दम थे मुखाम भोजन जो श्लोक है उसके अंदर मुहुस चुंबितम बिंब रक्त अधरम में, जो उनके बार बार जो चुंबन कर रही है तो उनको अब जो है अभिलाषा होती है वात्सल्य रस से, उनको जो है गोपी भाव में प्रवेश करने का सत्यव्रत मुनि को। इसीलिए वो राधा रानी जो बार बार चुंबन करती हैं, वो उनको स्फूर्ति एक क्षण के लिए आ जाती है और वो याचना करते हैं कि मैं जो है अभी आपके जो गोपी भाव में, जैसे आपने पहले मुझे वात्सल्य रस मुझे प्रदान किया था, तो आप अब कृपा करके जो गोपियों आपके होस्तों का जो अधर का जो अमृत पी रही है। भवर गीत में गोपियां 13 और 14 श्लोक में कहती हैं कि हे भवर, तेरा जो मालिक है और तेरे में कोई अंतर नहीं है। तुम जो है जैसे एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हो, तो तेरा श्याम सुंदर भी ऐसा है, कभी इस गोपी कभी उस गोपी कभी उस गोपी व्रज के अंदर लीला करते हो और वहां जाते हो। और लक्ष्मी बिचारी कितनी भोली है जो उसकी पाद सेवा करती है, लेकिन राधा रानी कहती है हम इतने, और वरिष्ठ गोपियां मंजरीगण कहते हैं हम इतने भोले नहीं है लक्ष्मी जैसे। और आगे कहते हैं कि देखो तुमने
ये भ्रमर गीत में जो प्रसंग है, आगे कहते हैं, कृष्णा तुमने अपने होस्टों का अधरों का हमको अमृत एक क्षण के लिए चकाया, एक क्षण के लिए आपने उसका स्वाद दिया और फिर जो है आप जो है हमें छोड़ करके चले गए। तो आपके अधर अमृत है, गोपी गीत में भी ये शब्दों का प्रयोग किया है गोपियों ने, क्योंकि ये अमृत है। अमृत का अर्थ है कि जिससे जिसका जिसको प्राप्त करने से जिसको लेने से मृत्यु नहीं होती। तो गोपियां कहती है कि हम कब के मर चुके होते हैं आपके विरह में, लेकिन आपके होस्टों का जो है अधर अमृत हमने एक क्षण के लिए चख गया, इसलिए हम मर भी नहीं पाते, हमारी ये अवस्था है। तो ये भाव सत्यव्रत मुनि के अंदर जागृत होता है और कृष्ण से ये वार्तालाप में ये याचना करते हैं। जैसे एक उदाहरण हमारे आचार्यगण देते हैं गोप कुमार का। गोप कुमार सारे तीर्थों में जाते हैं, इस भ्रमण करते हैं इस पृथ्वी पे, फिर उनको जो है प्राप्ति होती है स्वर्ग लोक की। स्वर्ग में भी वो तृप्त नहीं रहे, फिर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वैकुंठ में भी नारायण आदि भगवान के अनेक अवतारों के दर्शन होते हैं, फिर भी वो तृप्त नहीं हुए, उनमें और भी लोभ आता है। जैसे पहले बताया कि लोभ जो है वो शुद्ध भक्ति का मूल्य है, उसका जो है कीमत है उसकी। और जब तक वो गोलोक नहीं पहुंचते और उनको सख्य भाव कृष्ण का नहीं मिलता, तब तक वो संतुष्ट नहीं होते। तो पहले दास्य रस से वात्सल्य रस सत्यव्रत मुनि प्रवेश करते हैं और वात्सल्य रस से जब कृष्ण के श्री मुख के दर्शन होते हैं, उनके होस्टों के दर्शन होते हैं, जैसे श्री वल्लभाचार्य मधुराष्टकम में बोलते हैं, शुरू करते हैं अधरम मधुरम, अधरों से शुरू करते हैं। वल्लभाचार्य जो है, वैसे उनके जितने भी अनुयायी हैं, अक्सर वो कह सकते हैं 99% वो वात्सल्य रस में है। जो श्रीनाथ जी है, गोपाल है, जिन्होंने गिरिराज गोवर्धन जी को उठाया था, उस विग्रह की आराधना करते हैं और कृष्ण को अपना बेटा समझते हैं। लेकिन कृष्ण ऐसे भक्त वश्य है कि कुछ उनके पार्षद ऐसे हैं जिनको एक से ज्यादा रस में उनको प्रवेश देते हैं। तो कहते हैं कि ये जो अधरम मधुरम में भी एक रसिक भाव है, उसमें सिर्फ वात्सल्य भाव नहीं है, उसमें एक गोपी भाव है। और कहते हैं कि श्री वल्लभाचार्य भी एक गोपी है, वो श्री राधा जी की वो अंतरंगत शक्ति है स्वयं, और उनके जितने भी जो अष्टछाप सखा उनके जो शिष्य हुए, जिसमें से सूरदास जी, परमदास जी, परमानंद जी, कुंभनदास जी, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पद दिखे सारे के सारे गोवर्धन की कंदराओं में, वहां पर उनका निवास है। और वो साथ साथ में वो वात्सल्य रस में भी है और उनकी सेवा कुंजों में गोवर्धन की कंदराओं में उनकी गोपी का भी स्वरूप है। तो कभी कभी भगवान के जो भक्त हैं वो अनेक एक से ज्यादा रस में उनकी उनकी उपस्थिति होती है, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं ऐसा। एक बार हमने 2 साल पहले प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र पर हमने 2 दिन एक सेमिनार किया था, लगभग 2-2.5 घंटे का था, 2 दिन 4-4.5 घंटे, नमाम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, उसके ऊपर व्याख्या करी थी प्रभुपाद जी और गुरुजनों की कृपा से। तो अंत में हमें कुछ वरिष्ठ भक्त थे यहाँ पर, प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य थे, उसमें से एक प्रभुपाद जी की शिष्य माता जी ने हमें ये प्रश्न पूछा कि प्रभु कुछ लोग कहते हैं, खास करके गौड़ीय मठ में, कि स्वामी महाराज, क्योंकि प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लोग प्रभुपाद जी करके संबोधित करते हैं, और हमारे ऐसी भक्ति वाले स्वामी प्रभुपाद जी को उनको स्वामी महाराज करके, क्योंकि उनका संन्यास नाम था स्वामी महाराज। जैसे किसी का संन्यास नाम है गोपाल कृष्ण महाराज, या किसी का संन्यास नाम है भक्ति चारु महाराज, तो उनका नाम प्रभुपाद जी का जो संन्यास नाम था स्वामी महाराज। तो गौड़ीय मठ में कुछ लोग का ये अभिप्राय था कि स्वामी महाराज आपको माधुर्य रस नहीं दे सकते, वो सख्य रस में है, इसलिए उन्होंने वृंदावन में कृष्ण बलराम को मंदिर का नाम रखा और कृष्ण बलराम की जो है बीच में विग्रह की स्थापना करी है। एक कठिन प्रश्न पूछा हमें, और यद्यपि अगर माधुर्य रस चाहिए आपको तो आप हमारे पास आइए, गोड़िया मठ में हम आपको दे सकते हैं। तो हमारे हमने सुना है कि गौर गोविंद महाराज नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद गौर गोविंद महाराज जी, जिन लोगों ने ऐसे प्रस्ताव उनसे भी रखे थे, उनके कहते क्या हमारे गुरु महाराज ने सिर्फ एबीसीडी सिखाया है? हम लोग ये समझते नहीं है, जब हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र का उच्चारण ठीक से करते हैं और हमें भी अंदर से अच्छी तरह साधना करने से गुरुजनों के हमारे विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद के आदि सब, जब हम आचार्य गण के जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, उनके उनके शास्त्र पढ़ते तो प्रकाशित होता है, हम उसके अगर हम दो सेकंड हम या दो मिनट उनके ऊपर ले ले, क्योंकि इसको बहुत जरूरी है ये समझना कि ये जो भाव है भक्त का और रस का, तो प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में आप देखो नमाम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, कृष्ण के प्रेष्ठ है वो, और वो भूतले कहां से आए? गोलोक से आए। तो कोई कैसा ठीक है गोलोक से आए बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो तो सखा है और उन्होंने एक कविता भी लिखी है जलदूत पर, जिसमें भाव ये था कि हे कृष्ण हे मेरे मित्र, मैं कब तुम्हारे पास दोबारा आऊंगा और इन वृंदावन के वन के अंदर मैं तुम्हारे साथ गायचरण गोचरण करूंगा और आपके साथ जब मैं बैठूंगा प्रसाद लेने तो मैं लुटापुटी करूंगा, जैसे ग्वाल बाल कृष्ण से अपना जो है उसने मुख से कुछ लड्डू ले लिया या कुछ माखन ले लिया तो मैं कब करूं, तो वो भाव को उन्होंने ये पकड़ के रखा। तो कहते हैं कि प्रभुपाद जी का जो रस है वो सख्य रस है, लेकिन प्रभुपाद जी का ये हो सकता है कि प्रभुपाद जी का रस सख्य हो, लेकिन हमें यह भी प्रकाशित होता है कि प्रभुपाद जी माधुर्य रस में भी है, जैसे श्री वल्लभाचार्य माधुर्य रस में भी है अधरम वो गोपी भाव में, जैसे सत्यव्रत मुनि का भी जो भी भाव है वो उनके होस्टों को देखकर उनको चुंबन करने का मन करा जैसे कि राधा रानी और अन्य गोपियां करती है, वो माधुर्य रस का भाव उनके अंदर जो है जागृत हुआ है। तो प्रभुपाद जी में भी है माधुर्य, वो नमाम विष्णुपाद कृष्ण प्रेष्ठा बोले श्रीमते, श्रीमते का अर्थ क्या हुआ? अनेक अर्थ है लेकिन एक अर्थ है श्री मतलब श्री राधा रानी, और उनकी मति हमेशा उनका जो अंतर्करण भाव होता है वो राधा रानी की सेवा में है। और हम लोग आगे जाके बोलते हैं नमस्ते सारस्वते देवे, सरस्वती देवे नहीं है, सरस्वती तो सरस्वती देवी हुई जो ज्ञान की है, लेकिन ये सारस्वते ये व्याकरण है संस्कृत के अंदर, सरस्वती ठाकुर के शिष्य या सरस्वती ठाकुर के दिव्य पुत्र उसको बोलते हैं सारस्वते। जैसे कृष्ण का एक नाम है वासुदेव, क्योंकि वसुदेव के पुत्र जब आ लग जाता है तो सारस्वते देवे। तो सरस्वती ठाकुर कौन है? वो कृष्ण लीला में राधा रानी की अंतरंगत प्रिय नर्म जो है मंजरी है, नयन मंजरी जो रूप मंजरी की सेविका है। यह बहुत गुह्य है, वैष्णव भजन का अगर हम ध्यान करें तो हमें यह प्रकाशित होता है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद देखिए, जब उन्होंने अपना देह छोड़ा था, छोड़ने वाले थे सुबह 5:30 बजे सुबह उस समय भोर में, तब उन्होंने एक अपने शिष्य से कहा मेरे लिए भैया ये भजन गा लो। कौन सा भजन था? श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजना, से मोर भजना पूजना। ऐसे करके रूप मंजरी की इतनी सुंदर भक्ति की याचना करते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उससे पता चलता है कि वो रूप मंजरी की वो निकट की सेविका है नयन मंजरी। उनके पिताश्री भक्ति विनोद ठाकुर जी वो कमला मंजरी है, और हमारे जितने भी षड़ गोस्वामी हैं वो राधा रानी की बहुत प्रेष्ठ मंजरियां हैं। रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी है, रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी है, लोकनाथ गोस्वामी मंजुलाली मंजरी है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कस्तूरी मंजरी है, जीव गोस्वामी विलास मंजरी है इति आदि। तो इससे पता चलता है जब कृष्ण प्रेष्ठ है भूतले हैं श्रीमते हैं और सारस्वती देवे, तो कैसे वो माधुर्य रस में नहीं है? क्योंकि सरस्वती क्यों नहीं हो सकते? तो कहने का मतलब है कि जब भक्त का जो भाव होता है और कृष्ण का भाव, अगर कृष्ण चाहते हैं कि आप जो हमारे प्रभुपाद है वो चाहते हैं कि सख्य रस में भी आप मौजूद रहो, तो प्रभुपाद जी कहेंगे क्यों नहीं, और वो कहेंगे कि मदिरा रस में भी आप आइए, आप तो हो ही उसमें, तो क्यों नहीं। जैसे बलराम जी 5 रसों में मौजूद है, शांत रस में है, दास्य रस में है, सख्य रस में है, वात्सल्य रस में है और मधुर रस में, मधुर रस में अनंग मंजरी के रूप में है। सख्य रस में तो वो है ही अपने भाई बनकर के दाऊ, और वात्सल्य रस में जब वो गौ चरण करने जाते हैं तो माता पिता जैसा प्रेम दिखाते हैं, क्योंकि माता यशोदा कहे बलराम हे मैं तुम्हें सौंपती हूं मेरे लाला को, तो उसका ख्याल रखना, मैं और नंद मामा नहीं हूं, तुम हो बड़े घर में, तो एक वात्सल्य भाव होता है। दास्य रस में बलराम जी हम जब सेवा करते हैं, ये मृदंग है, करताल है, थाली है, आरती है, दीप है, ये सब उनका एक्सपांशन है, उनके स्वरूप है। दास्य रस में उनकी कृष्ण की सेवा होती है। और शांत रस में योगी जिनका दर्शन करते हैं वो परमात्मा का दर्शन करते हैं, तो शांत रस के अंदर जो है परमात्मा किसके अंश है, बलदेव जी के अंश है। तो कहने का मतलब है हर एक प्रकार से अलग अलग गोलोक के अंदर प्रकोष्ठ है, कृष्ण की इच्छा है। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम तद भक्तिरुत्तम, नारद जी ने बताया कि उत्तम भक्ति वही है, कृष्ण चाहते हैं कि एक से अनेक रस में मेरे साथ ये एक प्रेष्ठ भक्त मेरे साथ रहे, तो क्यों नहीं रह सकता। इसी वजह से तो ये जो सत्यव्रत मुनि का जो भाव है ये एक बहुत रसिक भाव है माधुर्य रस का। इसलिए गौड़ीय आचार्य और गौड़ीय वैष्णव हम इंटरेस्ट दिखाते हैं इस अष्टकम में। बाकी तो कितनी सारी स्तुतियां है, अनंत स्तुतियां है ठाकुर जी की, लेकिन हम इस दामोदर अष्टकम में क्यों रुचि बताए। वैसे दामोदर अष्टकम देखा जाए तो उसका विद्यमान तो वात्सल्य रस है, लेकिन हमें तो वात्सल्य रस से इतना कुछ है नहीं है। और सनातन गोस्वामी पाद जैसे उनके ऊपर इतना समय अपना कीमती डाल करके उसके ऊपर टीका लिखना उसकी कोई अंतरंगत कारण है, और यही कारण है कि उसमें जो है आखिरी में जो भाव है वो माधुर्य रस का भाव स्फुरित होता है सत्यव्रत मुनि को, और इसी के लिए वो याचना करते हैं। तो यहीं पे मैं विराम देता हूँ, कल जो भी वक्ता होंगे वो 6 श्लोक पर उसका अध्याय उसका जो है विस्तार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की। यदि अभी अगर किसी को कोई प्रश्न हो या कोई टीका या मेरी त्रुटि हो तो कृपा करके आप पूछ सकते हैं या कुछ कह सकते हैं, वरना श्रीला प्रभुपाद कृष्ण बलराम निताय गौर सुंदर ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर की, यशोदा दामोदर देव की, श्री राधा दामोदर देव की, गौर प्रेमानंदे।